ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय मुंबई फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा के विस्तृत होते फलक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म इतिहासकार गौतम चिंतामणि और पत्रकार मुर्तजा अली खान।
इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है 15 से 21 जून, और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान गौतम चिंतामणि जी। आपका स्वागत है चिंतामणि जी।
नमस्कार मुर्तजा, सो नाइस टू बी हियर, थैंक यू।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस साल के एडिशन की, तो क्या खास देख रहे हैं आप इस साल?
मुर्तजा, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विश्व का एक प्रसिद्ध फिल्म फेस्टिवल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस बार 1000 से ज्यादा फिल्में हैं कॉम्पिटिशन सेगमेंट में। 102 फिल्में तो थिंकिंग कमेटी ने सिलेक्ट की है, इंटरनेशनल फिल्म्स, नेशनल फिल्म्स, और 313 तो प्रोग्रामिंग की फिल्म्स हैं इसमें। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूनिक फेस्टिवल। 8 वर्ल्ड प्रीमियर हैं, 5 इंटरनेशनल प्रीमियर हैं यहाँ पे, प्लस भारत में फिल्म की चयता जो है वो यहाँ पे इस साल की ऑस्कर की फिल्में या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की फिल्में वो भी देखने को मिलेंगी उनको। और सबसे खास बात यह है कि फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे वो फिल्म मेकर्स, वो फिल्में जिनको अमूमन एक रेडीमेड ऑडियंस नहीं मिलती हैं, जो पॉपुलर श्रेणी की ना हो, वो कैटेगरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री बाजार जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का है। तो जी हाँ, इन सब बातों को अगर आप देखें तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल दिस ईयर।
अगर हम बाजार की बात करें तो बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। हमने देखा है बाजार यूजली गोवा में तो होता ही रहता है, लेकिन खास तौर पे इस बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को फोकस लेते हुए ये बाजार आयोजित किया जा रहा है। इस बाजार से आपको क्या लगता है किस तरह का फायदा मिलेगा हमारे युवा फिल्म मेकर्स को, खास तौर पे जो नॉन फिक्शन में रुचि रखते हैं?
नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म जो है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग प्लेटफॉर्म, भारत में पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। स्पेशली अगर आप देखें कि कोविड के बाद, उस दौरान जब Amazon Prime है या Netflix है या जो भी ग्लोबल सिनेमा ग्लोबल प्लेटफॉर्म से आप फिल्में देख रहे थे, वहां पे अ होल न्यू जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो इस बार पहली बार ये एक फिल्म बाजार ऑर्गेनाइज किया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए। 200 प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे, और तो और कुछ 10-11 कंट्रीज हैं जहाँ की फिल्में आ रही हैं, 27-28 लैंग्वेजेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पेशली यंग फिल्म मेकर्स के लिए। एक तो उनको मार्केट का ज्ञान मिलता है, ऐसे मार्केट्स जो उन्होंने शायद एक्सप्लोर ना किए हों या सोचा भी ना हो। मुझे याद है जब हम कॉलेज के बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में सोचा करते थे या अपनी एंट्रीज कहीं भेजा करते थे, तो इतना लिमिटेड स्कोप होता था दैट वी वुड यू नो गिव अप मिडवे। तो यहाँ पे नॉट ओनली विल दे बी इंट्रोड्यूस टू द ग्लोबल मार्केट, बायर्स होंगे यहाँ पे, प्लस जो मास्टर क्लासेस हैं वहां पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे खास बात होने वाली है, ये जो ओपन बायर और सेलर मीट आयोजन होगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फिल्म मेकर्स, बिकॉज कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे वहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफिसर्स, तो इट विल जस्ट ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड। आई थिंक मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, इस एडिशन का।
बिल्कुल, और ये साल खास भी रहा है हिंदुस्तान के लिए। अगर हम कान फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो बहुत ज्यादा इंडियन फिल्म्स जो हैं उनको स्पॉटलाइट मिली है, हम काफी मेजर अवार्ड भी जीते। तो क्या आपको लगता है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस साल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पार्टिसिपेशन को लेके, खास तौर पे अगर हम यंग स्टोरी टेलर्स और एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स की बात करें तो?
आपने बिल्कुल सही बात कही मुर्तजा, बिकॉज अभी एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, एंड वो भी एक ऐसी प्रोड्यूसर है जिन्होंने पॉपुलर सिनेमा भी प्रोड्यूस किया। सो अगर एक हार्ड कोर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को अवार्ड मिला होता तो शायद डॉक्यूमेंट्री जॉनर में इतना इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, बट बिकॉज जिन प्रोड्यूसर्स को अवार्ड मिला है, जिस फिल्म को ये अवार्ड मिला है, दैट हैज रियली रियली इग्नाइटेड पैशन इन यंग फिल्म मेकर। तो जी हाँ, एक नया प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप शुरू कर रहे होते हैं, जब आपकी फिल्मों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, यू ऑलवेज वंडर कि कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो यहाँ पे मार्केट का खुलना, प्रोड्यूसर्स का मिलना, सिंडिकेशन, फ्रेंचाइजी, एक्विजिशन, ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक प्लेटफॉर्म पे मिलना विल रियली इंस्पायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स टू नॉट गिव अप ऑन द जर्नी।
चिंतामणि जी, जब भी हम फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो सिर्फ फिल्म्स की ही बात नहीं होती, जैसे आपने भी बताया कि मास्टर क्लासेस होंगी यहाँ पे, कन्वर्सेशंस होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन के मौके मिलेंगे, बायर सेलर मीट्स होंगी। तो इस तरह से जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से उसको कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ ये ऑफर कर रहा है, और साउथ एशियन पार्टिसिपेशन के मामले में हम देख ही रहे हैं वुमेन सेंट्रिक अप्रोच भी इस बार फेस्टिवल की रहने वाली है, तो कैसे देखते हैं इस आयाम में, ये कैसे आगे लेके जाएगा इस तरह के एक्सचेंजेस को?
पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो सिनेमा का जो प्लेटफॉर्म रहा है वो एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डेवलप हो रहा है। पहले क्या होता था कि पॉपुलर फिल्में, अगर एक दौर था पॉपुलर फिल्मों का पॉपुलर होने का, तो फिर वही होती थी पॉपुलर फिल्में, फिर डॉक्यूमेंट्री हुई, फिर बीच में ये जो पूरा मिडिल सिनेमा आया या जिसको आप वुमेन सेंट्रिक सिनेमा कहते हैं। देखिए मैं इन टर्म्स में बिलीव नहीं करता, बिकॉज वुमेन सेंट्रिक सिनेमा अगर आप बोलते हैं तो आप सोचते हो कि बहुत छोटा समूह है, बहुत छोटा ग्रुप है कि गिन चुन के फिल्म मेकर से बना रही होंगी। लेकिन अगर आप दुनिया भर में देखें, नॉट जस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया देखिए या इवन हॉलीवुड देखिए, वुमेन फिल्म मेकर्स आर रियली रीडिफाइंड सिनेमा टाइम एंड अगेन। भारत में अगर आप देखें तो एक जमाने में कानन देवी थी, देविका रानी थी, ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स रह चुके हैं। देविका रानी ने तो अशोक कुमार को डिस्कवर किया, दिलीप कुमार को डिस्कवर किया। तो ये कहना कि एक छोटा कैटेगरी है ये बहुत गलत बात होगी। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो कैथरीन बिगलो जैसी फिल्म मेकर हैं, या इंडिया में अगर आप देखें जैसे अभी अश्विनी जो फिल्में बनाती हैं, या सारी परांजपे जो फिल्में बनाया करती थी 1980s में, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप रहा है। इट इज नॉट बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, आई वोंट इवन से दैट नॉट बीन गिवन द ड्यू, बिकॉज दैट इज अंडरमाइनिंग देयर अचीवमेंट। बट अगर आप एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इट्स प्लेटफॉर्म सच एज फिल्म फेस्टिवल्स एंड मास्टर क्लासेस या ये डॉक्यूमेंट्री बाजार, जहां पे यू आर ओपन टू न्यू विस्टर्स। सो आई थिंक मास्टर क्लास का मिक्सचर एंड प्लस इस साल का जो फोकस रहेगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, आई थिंक दैट इज रियली गोइंग टू ऑल्सो चेंज द इंडस्ट्रीज माइंडसेट थोड़ा बहुत, कि आप इसको अभी उस तरीके से स्लॉट अगर कर रहे हैं तो यू आर डूइंग एट योर ओन पेरिल। आप ऑस्कर की बात करें, आप बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात करें, या आप एक जेन्युइन आर्टिस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, इट शुड नॉट बी डिफाइंड बाय द जेंडर ऑफ द फिल्म मेकर। अनफॉर्चुनेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट हैज बीन द केस, बट चेंज ऐसे ही आता है और एक टाइम के बाद एक्सपोनेंशियल बेनिफिट जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन द ईयर्स टू कम। सो आई थिंक दीज टू थ्री वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन द साइड लाइन्स ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ थिंग टू लुक आउट फॉर एंड वॉच आउट फॉर।
अच्छा चिंतामणि जी, एक और चीज जो हमने हाल फिलहाल में देखी कि जो लाइन थी जो डिवाइड करती थी कि फिक्शन है नॉन फिक्शन है, वो कहीं ना कहीं अब बहुत हद तक फेड होती जा रही है और अब स्टोरी टेलिंग के टर्म्स में लोग ज्यादा बात करते हैं। मशहूर फिल्म फेस्टिवल्स में भी देखा जाए तो नॉन फिक्शन हाइब्रिड नैरेटिव्स, नई तरह के फॉर्म्स इमर्ज करके आ रहे हैं, नई तरह के नैरेटिव्स इमर्ज हो रहे हैं। तो उस अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आप मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल की भूमिका कैसे देखते हैं?
यही वो जगह है जहां पे आपको एक ग्लोबल सिनारियो से रूबरू होने का मौका मिलता है। फिल्म फेस्टिवल्स आर एसेंशियली अ प्लेटफॉर्म जहां पे द बेस्ट इन द फील्ड कम टुगेदर और एटलीस्ट आर इनवाइटेड टू प्रेजेंट फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू चेंजेस। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऑडियंस काफी स्मार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर काफी स्मार्ट हो गया है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है एक वुमन फिल्म मेकर और एक मेल फिल्म मेकर के बीच। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने जो मेल डिपिक्शन साई फरांसाई की पिक्चरों में देखा है, आई हैव नॉट सीन बेटर पोर्ट्रेयल्स ऑफ मेन ऑन स्क्रीन। चाहे आप साई जी की आप कथा देखें या स्पर्श देखें, आई थिंक समवेयर दिस फाइन लाइन लाइक यू सेड नॉट जस्ट बिटवीन द जॉनर्स ऑफ सिनेमा बट ऑल्सो जो बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू थोड़ा बड़ा है। आई थिंक अभी भी बहुत वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर, बट छोटे छोटे डिस्टेंसेस से ही एक दिन बड़ा चेंज आएगा, वी विल नेवर इवन गेट टू नो दैट। सो फॉर दैट एंड ये 18वां एडिशन है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, इट्स अ मार्की इवेंट एंड विद ईच ईयर वी आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू टैलेंट। एंड स्पेशली अभी 10-12 साल से तो सुन ही रहे होंगे कि इंडियन सिनेमा का समय आ गया, स्लमडॉग मिलियनेयर की पॉपुलैरिटी देखिए एंड द लाइक्स ऑफ दैट। बट एट अ वेरी इंट्रिंसिक लेवल कैरेक्टर्स आपको ज्यादा साउथ एशियन दिखने लगे हैं और उसमें भी इंडियंस ज्यादा दिखने लगे हैं। सो दीज थिंग्स ऑलवेज टेल यू अबाउट द चेंज विच इज टेकिंग प्लेस। एंड ये बहुत समय के बाद हो रहा है कि जब सिनेमा के पर्दे पे और पर्दे के पीछे का जो चेंज है वो सेम स्पीड से हो रहा है।
चिंतामणि जी, मिफ की जो खासियत है वो ये रही है कि हमेशा से वो ट्रेंड सेटर रहा है और हर बार कुछ ना कुछ नया लाता है। इस बार एक खास तौर पे जो एनिमेशन वर्कशॉप हो रही है उस पर काफी ज्यादा फोकस है, तो एनिमेशन लवर्स के लिए और एनिमेशन स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप इस तरह का इनिशिएटिव जो इस बार खास तौर पे मिफ जिस पे स्पॉटलाइट कर रहा है थ्रू इट्स एनिमेशन वर्कशॉप?
एनिमेशन इज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री एंड जॉनर ऑन टू इटसेल्फ। अभी ये कहना तो मतलब दिस इज वेस्टेड कि एनिमेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिनेमा मेकिंग। बट मुझे खुशी इस बात की हो रही है मुर्तजा कि इस बार जो एनिमेशन का पैकेज क्यूरेट किया जा रहा है वो चार ऐसी कंट्रीज हैं जो आप ट्रेडिशनली शायद एनिमेशन के साथ एसोसिएट ना करें। आपके पास फ्रांस है, स्लोवेनिया है, अर्जेंटीना है, ग्रीस है, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आप आइडली यू डोंट एसोसिएट एनिमेशन। तो यंग फिल्म मेकर्स एंड स्पेशली यंग एनिमेटर, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर एनिमेटर्स, बहुत बड़ा मार्केट है ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेटर्स का। अब ये यंग लोग और या ये इंडस्ट्री व्हेन इट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड टू सिनेमा एंड एनिमेशन फिल्म्स फ्रॉम कंट्रीज जो ट्रेडिशनली शायद एनिमेशन पावर हाउसेज नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी आती है और ये आइडिया देखने को मिलता है कि जो आप डिफाइन करते हैं सिनेमा वो सिनेमा नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ सिनेमा है। तो एनिमेशन बोलते संग बिग प्रोड्यूसर्स जैसे डिज्नी हो गए या पिक्सार हो गए ये माइंड में आते हैं, बट इनके अलावा भी बहुत बड़ा मार्केट है इंटरनेट के माध्यम हमें देखने को मिलता है। बट इन चार देश जो शोकेस कंट्रीज हैं, आई थिंक दिस विल अशर इन अ न्यू एरा फॉर एटलीस्ट थिंकिंग फॉर एनिमेटर्स एंड एनिमेशन लवर्स इन इंडिया।
चिंतामणि जी, एक और चीज जिसपे मैं थोड़ा सा आपकी राय चाहता हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो है हमेशा उठ के आता है और इसको लेके काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ओटीटी आने के बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो बदल गए हैं, लेकिन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिल्म फेस्टिवल्स का एक इम्पॉर्टेंट स्पेस रहा है, और उसमें आप मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं, स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स की बात करें या यंग फिल्म मेकर्स की बात करें।
देखिए, सिनेमा देखना एक एडवेंचर है बाय इटसेल्फ, और जब आप फिल्म बनाने की बात करते हैं तो आजकल आपको सुनने में आता होगा कि एक पॉपुलर हिंदी फिल्म 4000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म 6000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, और कुछ फिल्में होती हैं जिनको शायद एक दो स्क्रीन मिलती हैं, देन वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स देम। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा नेसेसरी इविल है विच हैज नॉट जस्ट रिवाइव्ड सिनेमा बट इट हैज ऑल्सो थ्रॉटल्ड अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स ड्रीम्स। तो इस डायकॉटमी से निकलने के लिए अभी इंटरनेट का मार्केट कही है या आप ओटीटी का मार्केट कही है, इट हैज रियली श्रंक द वर्ल्ड, बट इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, एंड पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो सरकार के जो प्रयत्न रहे हैं सिनेमा को पॉपुलराइज करने के लिए या फिल्म प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए, इट इज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर फिल्म जनरली इन इंडिया। एंड आई थिंक इस माहौल में एक लीडिंग फिल्म फेस्टिवल अगर एक यू नो ओपन बायर सेलर मार्केट मीट रखता है तो फॉर यंग फिल्म मेकर्स उनका वर्ल्ड सडनली यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्रीजेस। मुझे याद है 15-20 साल पहले अगर आप भारत में कोई छोटी बजट की फिल्म बना रहे हो और अगर आप बोले कि मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले बमन ईरानी की फिल्म आई थी लेट्स टॉक, जब वो फिल्म बन रही थी या जब वो फिल्म रिलीज हो रही थी तो कहा गया था कि लिमिटेड लोग देखेंगे, लेकिन एक फॉरन फिल्म प्रोड्यूसिंग पर्सन ऐसा नहीं सोचता। एक छोटा सा छोटा प्रोड्यूसर जब एलए में या न्यूयॉर्क में या पेरिस में कोई फिल्म बनाता है तो वो ये नहीं सोचता कि पेरिस के 4 स्क्रीन पे मेरी फिल्म चलेगी या न्यूयॉर्क के 3 स्क्रीन पे मेरी फिल्म चलेगी, वो ये सोचता है कि ये फिल्म पूरी दुनिया में चल सकती है जहां पे लोग सिनेमा देखें। लैंग्वेज वॉज नेवर अ बैरियर। तो हम इस माइंड सेट से निकले हैं कि अगर आप अंग्रेजी में फिल्म बनाएंगे तो कम लोग देखेंगे, हिंदी में फिल्म बनाएंगे ज्यादा लोग देखेंगे, आप तमिल में फिल्म बनाएंगे तो नॉर्थ इंडिया का मार्केट नहीं होगा। ये सारी जो मानसिकता है ये पिछले 10 साल में बहुत बहुत इट हैज अंडरगॉन अ ट्रांसफॉर्मेशन। सम ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इंडियन सिनेमा सो टू स्पीक हैव नॉट बीन हिंदी, एंड हिंदी फिल्म्स का सक्सेस साउथ में और नॉर्थ ईस्ट जैसे मार्केट्स में बहुत इंटरेस्टिंग रहा है लास्ट 4-5 ईयर्स में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड नॉट ओनली फॉर फिल्म मेकर्स बट यहाँ के जो इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे ऑल्सो गेट एन आइडिया कि फॉरेन मार्केट में किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या स्टोरीज हैं जो वहां चल सकती हैं। एंड देखिए, अगर हम कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग यूनिवर्सल है तो भाई उसे लिमिट क्यों कर रहे हैं एक ही जगह पे दिखाते हैं।
चिंतामणि जी, इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मुर्तजा, एंड आई होप दैट मोर पीपल गो एंड वॉच फिल्म्स, ये फिल्म देखिए, फिल्म्स नीड ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मुंबई फिल्म महोत्सव, भारतीय सिनेमा के विस्तृत होते फलक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म इतिहासकार गौतम चिंतामणि और पत्रकार मुर्तजा अली खान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 0904044।